শান্তি। আজকে সায়ংকালীন সত্র মে হামারে বীচ মে পধারে হ্যাঁ আদরণীয় রাজযোগী ভ্রাতা রাজু ভাইজি, এক হাত হিলাকর ভ্রাতাজি কা স্বাগত সৎকার অভিনন্দন। আপকা জন্ম ইউপি কি ধরনি মে হুয়া হ্যাঁ और आपका ये सौभाग्य रहा, बाल्यकाल से ही घर में गीता पाठशाला होने के कारण ईश्वरीय वातावरण मिला, तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई उस ईश्वरीय वातावरण में होती रही। और फिर 1971 में पहली बार मधुबन धरनी पर कदम रखा और उसका मानस पटल पर इतना गहरा असर हुआ कि दिल ने कहा यहीं रह जाओ, लेकिन माता पिता की परमिशन नहीं थी इसलिए लौटना पड़ा। और फिर 1972 में जब आए तो परमिशन आदि लेकर आए और समर्पित होना इजी हो गया। तो 1972 से आज दिन तक आप इस हेडक्वार्टर में रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन सेवाओं को करते आपकी डायमंड जुबली पार हो चुकी है, पूरे 60 वर्ष कर दिए हैं आपने इस मधुबन धरनी पर। और जैसे कि मधुबन में जब भी पहले आते हैं तो विविध सेवाएं मिलती हैं, तो आपको भी विविध प्रकार की सेवाएं मिलती रही, बहुत रुचि से सभी सेवाएं करते रहे। और फिर 1976 में आपका एक विशेष सेवा का पाठ खुला, जानते हैं आप सभी हाँ? वो पाठ जिसके कारण से ही आज ब्राह्मण परिवार में आप किस नाम से प्रसिद्ध हैं, मुरली वाले राजू भाई, कि जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में करना और फिर सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करना। तो वो सेवा आज दिन तक आप बखूबी निभा रहे हैं। इसके अलावा पत्र पुष्प आदि भी आप ही भेजते हैं, अव्यक्त वाणियों से छोटी छोटी पुस्तिकाएं तैयार करने का भी जिम्मेवारी आपकी ही है। दादियों के पास उन दिनों जो पत्र आते थे उनके प्रति उत्तर भी आप ही दिया करते थे। वर्तमान में आप हमारा फोटोकॉपी डिपार्टमेंट, स्टेशनरी आदि आदि देखते हैं, और विशेष करके जो हमारा ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके आप वाइस चेयरपर्सन हैं, और इसके अंतर्गत शाश्वत खेती का प्रोजेक्ट चल रहा है और जिस कारण से गवर्नमेंट के नज़दीक आना बहुत सहज हो गया है। इतना ही नहीं, जो मुरली की सेवा आपको मिली हुई है इस कारण से आपकी उंगलियां हमेशा ही टाइपराइटर पर नृत्य करती रहती है और वही फिर मुरलियां दिमाग में भी छपती रहती है। तो आप सभी ने देखा होगा अमूल्य रतन करके एक सीरीज चली जिसमें शायद अभी भी चल रही है, 100 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं, 1300 से, 1000 से ऊपर, 1300 से ज्यादा एपिसोड हो चुके हैं, जहां पर अव्यक्त मुरलियों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और आप उनका बखूबी उत्तर देते हैं। तो बहुत ही प्रतिभावान व्यक्तित्व हमारे बीच में आज हमें सुनाएंगे, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, इसका वास्तविक अर्थ क्या होता है, सुनते हैं भ्राता जी को। आदरणीय भ्राता जी,
ओम शांति। सभी ने बहुत प्यार से बाबा का गीत सुना, अंदर ही अंदर गुनगुनाया भी, मेरा तो एक शिव बाबा, पक्का है ना? बाबा यही चाहते हैं कि कलयुग के अंत में जब हर समय हर प्रकार से हरेक से दुख और अशांति की ही अनुभूति होती है। ऐसे समय पर मेरे बच्चे एक मेरे से ही सर्व प्राप्तियां करके अपने आप को संपन्न बनाए, बाबा के बच्चे बने निश्चय हुआ, अंदर से दिल यही गीत गाने लगी, मेरा तो एक दूसरा न कोई। सभी ने बाबा को अपना संसार तो बनाया है ना, बनाया है कि और कोई है? देखना अपने आप को। कभी कभी ऊपर ऊपर गीत तो हम बहुत अच्छी तरह से गाते हैं, लेकिन अंदर सोचते हैं कि बाबा तो निराकार है, साकार में कोई तो चाहिए। और साकार में चाहिए तो फिर बुद्धि कहीं न कहीं किसी न किसी की योग्यता पर, विशेषता पर, सहयोग पर प्रभावित हो जाती है। उनको ही हम अपना आधार मानने लगते हैं। लेकिन बाबा देखते कि इस समय अगर कोई भी देहधारी को आधार बना लिया तो जो हमारा एक स्लोगन है, अंत मति सो गति, अंत समय में अगर किसी देहधारी की याद आ गई तो बुद्धि भटक जाएगी। गति और सदगति जिसके लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं उससे दूर हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा ही हमारा संसार है। संसार में दो ही वस्तुएं होती, दो ही चीजें हैं, एक है व्यक्ति और दूसरी है वस्तु। संसार में व्यक्ति माना भिन्न भिन्न प्रकार के संबंध हैं, और संबंध के साथ साथ जो भी वस्तुएं हैं, पदार्थ हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनके आधार से इस मानव जीवन में हम रह रहे हैं, संसार में यही दो चीजें आत्मा को अपनी तरफ बांधे हुए हैं। अभी हम सबको बंधन से मुक्त होने के लिए बाबा ने ज्ञान दिया है। ज्ञान की सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, बाबा ने हमें चार ही सब्जेक्ट पढ़ाई हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। चारों ही सब्जेक्ट की कुछ ऑब्जेक्ट है, एम ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अगर कोई पढ़ाई कर रहे हैं और अपने लक्ष्य को ही पता नहीं है तो उस पढ़ाई से प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सबको पता है कि जो बाबा ने हमें पढ़ाया है, और ये पढ़ाई कहते हैं केवल संगम युग पर ही बच्चों को प्राप्त होती है, सतयुग और त्रेता में इस पढ़ाई की प्रारब्ध है, द्वापर और कलयुग में फिर से वही भक्ति मार्ग शुरू होगा, वहां पर भक्ति का ही ज्ञान रह जाता है। लेकिन संगम युग पर बाबा अपने बच्चों को नया ज्ञान दे करके नई जीवन देते और कई प्रकार के बंधनों से मुक्त होने की विधि बताते हैं। अगर हमने ज्ञान की सब्जेक्ट को यथार्थ रीति से समझा है तो ज्ञान हम सबको बंधन से मुक्त बनाने के लिए ही बाबा ने दिया है। आत्मा का ज्ञान दिया, देह के बंधन से आत्मा मुक्त होने लगी। देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूं, इसका अनुभव होने लगा। परमात्मा का ज्ञान मिला कि वो सर्व संबंधों से एक ही बीज है, और अगर एक बीज को आपने पकड़ लिया, बीज को अपना बना लिया, तो पूरा वृक्ष आपका हो जाएगा। हम लोगों का तो यही अनुभव है कि जब बीज अपना हो गया तो वृक्ष के पीछे जाने की जरूरत नहीं रही। संबंधों से बुद्धि योग तोड़ने का सबसे अच्छा साधन बना। मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई। कोई भी देहधारी संबंध जिसमें मूल चार संबंधों के बारे में अभी गीत में था, माता पिता, शिक्षक और सतगुरु, मुझे तो यही चार संबंधों ने आकर्षित किया और इन्हीं चार संबंधों के आधार से ही मैं मधुबन में समर्पित हुआ। दूसरे संबंधों का इतना पता, इतना ज्ञान नहीं था। लौकिक में आयु बहुत छोटी थी, पढ़ाई करते करते स्टूडेंट लाइफ में मधुबन आया। उधर भी माता पिता की बहुत अच्छी पालना मिल रही थी क्योंकि मैं परिवार में इकलौता था और इसके कारण कोई भी प्रकार की जरा भी कोई बंधन नहीं, कोई भी प्रकार की रोक टोक नहीं थी। और मधुबन में आए तो दीदी और दादी ने माता पिता के रूप में ही शुरू से ही पालना दी। ऐसे ही अनुभव होता था जैसे बच्चे को सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है, ऐसे ही मधुबन में भी इसी प्रकार की पालना मिली। तो माता पिता मिले और फिर शिक्षक के साथ भी इतना समीप का संबंध रहा जो आज तक भी मेरा स्टूडेंट लाइफ अभी भी चल रहा है। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है और सुप्रीम शिक्षक एक बाबा ही है और कोई ने मुझे पढ़ाया नहीं है। इसलिए कभी कभी बहुत अंदर का नशा रहता है। जब कभी कोई यूनिवर्सिटी में कोई बड़े प्रोग्राम में जाना होता है और वहाँ पर मेरा प्रवचन होता है तो मुझे बाबा बहुत याद आता है कि मैंने उस यूनिवर्सिटी को तो नहीं देखा है लेकिन सुप्रीम शिक्षक ने हमें इतना योग्य बनाया है जो आज सभी साइंटिस्ट, बड़े बड़े वाइस चांसलर्स, एग्रोनॉमी के प्रोफेसर सब सामने होते हैं और उनके बीच में बाबा का संदेश, योग सिखाने का, ज्ञान देने का अवसर मिलता है तो ऐसे लगता है सुप्रीम शिक्षक ने कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है और पढ़ा ही रहा है, अभी भी पढ़ा रहा है। इस पढ़ाई से हम सब ने डिग्रियां कितनी प्राप्त कर ली है आप सब जानते हो, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ। बाबा ने अपने बच्चों को स्वदर्शन, चक्रधारी, नॉलेजफुल ये डिग्रियां दे दी। पढ़ाई की ही सब डिग्रियां हम सबको प्राप्त हैं। एक एक बच्चे को बाबा ने तीन नेत्र दे करके त्रिनेत्री बना दिया। तीनों कालों का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी बना दिया। तीनों लोकों की पहचान दे करके त्रिलोकीनाथ बना दिया। पूरे चक्र का परिचय दे करके स्वदर्शन चक्र घुमाना और फिराना सिखा दिया। एक एक बच्चे को देखो सुप्रीम शिक्षक ने कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाई है और उस पढ़ाई के आधार से ही हम सब इतने योग्य बने हैं जो किसी भी स्थान पर, किसी भी सब्जेक्ट पर प्रवचन दे सकते हैं, उसकी समझ रखते हैं, ज्ञान रखते हैं। ज्ञान सागर ने स्वयं पढ़ाया है और सतगुरु के साथ तो इतना समीप का संबंध है जो हर पल उसकी आज्ञाएं सिर माथे हैं। श्रीमत जिसके अंदर हम अमृत वेले से रात तक रहते हैं, सतगुरु की श्रेष्ठ मत गाई हुई है। अमृत वेले से रात्रि तक के लिए बाबा ने श्रेष्ठ मत दी है और उस मत के अंदर चलते हुए हम सब अपनी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो मूल तो यही चार संबंध बाबा के साथ शुरू से ही रहे हैं। उसके बाद फिर लौकिक जीवन में आएंगे तो शादी करें, बच्चे करें, परिवार बढ़ाएं, भाई चाहिए, बहनें चाहिए, बहुत सारे संबंध हैं। और बुद्धि उन्हीं में आजकल तो फंसी रहती है कि मेरा मेरा मेरा, आए हैं सब पार्ट बजाने के लिए और मेरे मेरे के फेरे में फंस गए हैं। खिलाड़ी बन करके खेल खेलने के लिए आए थे, ना कोई मेरा था, ना मेरी है, ना रहेगी, लेकिन शरीर लिया, संबंध बने और संबंधों के आधार से सहयोग मिलते मिलते एक दूसरे में अटैच हो गए और उस अटैचमेंट के कारण ही दुख है। वास्तव में वैसे कोई दुख नहीं है, लेकिन जहाँ लगाव है, झुकाव है, वहाँ पर ही आत्मा दुखी और परेशान होती है। है कुछ भी नहीं, अपना संसार बसा के हम सब बैठ गए। और ऐसे समय पर बाबा मिला है जो कहता है, बच्चे इन सब से अपनी बुद्धि का योग तोड़ो, एक मेरे से जोड़ लो। तो बहुत सूक्ष्म रस्सियां हैं जिनमें हम सब कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। जब एकांत में एक बाबा के ऐसे एकांत के स्थान पर हम आते हैं, तपस्या करते हैं, योग में बैठते हैं, तो अपनी सूक्ष्म रस्सियों को देखना चाहिए, कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, किधर खिंचाव है। किसी को धन खींचता है, किसी को साधन खींचते हैं, किसी को संबंध खींचते हैं और किसी को संस्कार खींचते हैं। इन्हीं में ही भटकती है बुद्धि। बैठो बाबा की याद में, जहाँ पर भी संबंधों में कोई खिंचाव होगा, लगाव होगा, वही संबंध सामने आते हैं, बुद्धि वहाँ जाती है, पता नहीं उसका क्या होगा, उसको अकेले छोड़ के आए हैं, उसको कौन संभालेगा। बहुत सारी बुद्धि खिंचाव उधर अपने ऑटोमेटिक जाता है, कहने की या याद करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमने संबंध बनाए हुए हैं, उनको अपना समझा हुआ है। ऐसे कुछ संस्कार हैं जो कर्म करते करते संबंध में आते, कर्म करते संबंध इतने कड़े संस्कार बन गए, उन संस्कारों के कारण उसी प्रकार के संकल्प चलते हैं, उसी प्रकार का चिंतन रहता है, उसी प्रकार के स्वप्न आते हैं, फिर बोल निकलते हैं, कर्म हो जाते हैं। संस्कार भी इस समय बहुत आत्मा को अपनी तरफ खींचते हैं। ब्राह्मणपन के संस्कार जो हैं, दिव्यता की, अलौकिकता की, पवित्रता की, उसकी बजाय कहीं न कहीं कोई न कोई साधारणता संस्कारों में दिखाई देती है। उनका बोलना, चलना, बैठना, कर्म में आना, वो संस्कार प्रकट करते हैं। संस्कार इनके सचमुच पक्के ब्राह्मणों के हैं या किसी शूद्रपन के हैं। बाबा ने हमारे संस्कारों का दिव्यीकरण किया है, शुद्धिकरण किया है। हम संस्कारों को मारते नहीं, जलाते नहीं हैं। वैसे कहते हैं संस्कारों का संस्कार कर दो, लेकिन एक संस्कार तो आत्मा के अविनाशी हैं, वो परिवर्तन होते हैं, मोल्ड होते हैं, लेकिन हैं तो आत्मा के अंदर भरे हुए हैं। सतयुग से लेकर के ही, सतयुग और त्रेता में जब आत्म अभिमानी स्थिति है तो वो दिव्य संस्कार हैं, पवित्र हैं, और जब देह अभिमान के कारण कोई कर्म किए तो वो संस्कार भिकारी, पतित, दैहिक संस्कार बन गए। और इस समय कलयुग के अंदर कोई भी आत्मा उन विकारी पति संस्कारों से मुक्त नहीं है। हम सब जानते हैं हर एक उन संस्कारों के अधीन है, भले वो निमित्त इस जन्म में कोई ऐसे कर्म न भी किए हों, लेकिन पास्ट में किए हुए संबंधों के साथ कर्मों के संस्कार जो बने हैं, उन संस्कारों की छाया कभी कभी इस जीवन में दिखाई देने लगती है। अगर इस जन्म में तो नहीं किया है, लेकिन पिछले जन्मों का प्रभाव दिखाई देता है, इसलिए उसका शुद्धिकरण करना, उन संस्कारों को पहचानना, उसके लिए दृढ़ता संपन्न संकल्प लेना, ऐसी तपस्या करना जो वो संस्कार अशुद्धि मिक्स हुई है। जैसे सोने में अगर कोई अलाय मिक्स हो जाए तो उस अलाय को निकालने के लिए, उस मुलम्मे को उसमें से हटाने के लिए सोनार को बहुत तेज आग में उसको डालना पड़ता है। सोना कोई जल के खत्म नहीं हो जाता, सोना गल जाता है और गलने के बाद, पिघलने के बाद उसमें जितनी मिलावट है वो सब को अलग कर लेता है, फिर प्योर डल्ली बना करके फिर कहता है ये रियल गोल्ड है। और रियल गोल्ड है तो उसकी निशानी वो सहज मोल्ड हो जाता है, फिर उससे कोई भी जेवर उसको बनाना बहुत सहज हो जाता है। उसमें भी कुछ मिक्स करना पड़ता है लेकिन फिर भी वो रियल बना करके फिर उसको जेवर का रूप देता है। तो बाबा भी संगम के समय पर हम सब के संस्कारों का इस प्रकार से शुद्धिकरण करते हैं, जो भी इसमें देहाभिमान के कारण, विकारों के कारण संस्कार बन गए, उन संस्कारों में जो अशुद्धियाँ आई हैं वो बाबा की याद में रह करके उन अशुद्धियों को हम निकालते हैं, बाहर करते हैं। चेक करना चाहिए कि संस्कार कहीं बार बार उछलते तो नहीं है, अपना रूप दिखाते तो नहीं है, पिछले जन्मों के संस्कार या इस जन्म में भी कुछ ऐसे देह मान के अधीन कोई ऐसे कर्म हुए हैं जिन कर्मों की छाया अभी भी चलते चलते ब्राह्मण जीवन में भी दिखाई देने लगती है। इसलिए संस्कारों का शुद्धिकरण हो, संबंधों में जहाँ जहाँ लगाव झुकाव है, बंधन है, उनसे आत्मा सहज मुक्त हो जाए। बाबा कहता बच्चे तुम एक मेरे से जोड़ लो तो अनेक बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाओगे। अगर कोई ने सच्चे दिल से बाबा को हर संबंध से अपना बनाया है कि मेरा तो एक दूसरा न कोई, तो बाबा भले निराकार है लेकिन साकार रूप में किसी न किसी से वो कार्य अपने आप करा लेता है, मुझे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं कि बाबा ही संसार है और कोई पर आधार नहीं रखा तो कोई न कोई ऐसी आत्माएं निमित्त बन जाती हैं जो कभी सोचा भी नहीं है कि ये भी हो सकता है क्या। जैसे मेरे लौकिक में कहते थे आपका कुलदीपक कौन बनेगा अगर आप ब्रह्मा कुमार बन गए तो। पिताजी तीन भाई हैं, उनके बीच में मैं इकलौता हूँ, तो नेचुरल है बंधन तो आते हैं कि आगे क्या होगा, सबके सवाल होते हैं लौकिक में। लेकिन जब हमने एक संसार बाबा को बनाया है तो बाबा जाने मैं क्या करूँगा, मुझे बाबा मिल गया, मुझे बाबा के कार्य में सहयोग देना है, मददगार बनना है, वो जवाबदार है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। मैं अपने आगे एक स्लोगन बाबा का याद रखता हूँ, बच्चे संगम युग पर सोचने का काम भी तुम मुझे दे दो। दिया है हमारे लिए, वो सोचे मैं क्यों सोचूं। इतना अच्छा प्यारा सच्चा दिल का संबंध अगर बाबा के साथ है तो मैंने देखा है वो सोचने का काम भी वो खुद करता है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। इसमें हमको असोचता बनना चाहिए। कहाँ से बच्चे बाबा के निकलते हैं, घर संभालने वाले आ गए, खेती संभालने वाले आ गए, रोज क्लास चलाने वाले आए, मुरली सुनाने वाले आए, और आज अगर कोई उस गांव में जाता है, लौकिक कोई भी नहीं है, एक भी संबंध लौकिक नहीं है, लेकिन उस अलौकिक परिवार ने उस घर को आश्रम बना के रखा है और कुलदीपक बाबा अपना बैठा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि अगर कोई ऐसे कारण बनेंगे, बंधन तो आते हैं, हिसाब आते हैं लौकिक के कारण कि आप ऐसे कैसे छोड़ के जाएंगे। लेकिन जब हम एक पर निर्भर हो जाते हैं, एक में पूरा भरोसा रखते हैं, कहते हैं एक का बल एक का भरोसा, तो बाबा अपने आप सब कुछ संभालता है। अभी का अनुभव मैं सुनाता हूँ। मुझे अचानक विदेश यात्रा पर जाना हुआ। अभी थोड़े दिन पहले, 5-6 दिन पहले मैं अमेरिका से आया हूँ वापस। तो जाने के समय जब टिकट बना रहा था तो सबके यही संकल्प थे, अकेले जाओगे इतनी दूर। मैंने कहा मैं अकेले पहले भी घूम के आया हूँ, क्या बड़ी बात है। मैं 16 साल पहले भी गया था लंदन अमेरिका सब जगह, फिर बुलाया जा रहा है, मैं अकेले ही जाऊँगा, कौन इतना टिकट का खर्चा करेगा, और मैं किसी को कहूँ तो मेरे साथ चलो, मैं तो नहीं कहूँगा। बाबा जाने मुझे ले जाएगा, जहाँ ले जाएगा, जैसी सेवा कराएगा मैं जाऊँगा। टिकट करा रहा था, सामने से एक भाई का फोन आता है, भाई जी क्या प्रोग्राम है। हमने कहा ऐसा ऐसा टिकट करा रहा हूँ, विदेश जाना है, और आप तो अभी 3-4 महीने पहले अमेरिका हो के आए हो, नहीं तो आपको कहते आप साथ चलो। कहता है नहीं नहीं मैं आपको कंपनी दे सकता हूँ, सामने से कहता। हमने कहा इतना महंगा टिकट है, क्या करना है। कहता है उसकी चिंता नहीं करो, मैं अभी पैसा भेजता हूँ, मेरा भी टिकट अपने साथ करा लो। कहाँ से वो आया सामने से, किसी से पूछा नहीं, किसी से कहा नहीं, और बाबा ने इतने बड़े टूर में, 35 दिन का टूर था, बहुत फास्ट टूर था, इधर से इधर, इधर से इधर, करीब मैंने 20-25 सेंटर को कवर किया, और वो एक सेंटर दूसरे सेंटर से कितनी दूर होगा, जैसे यहाँ है और जयपुर है, एक सेंटर दूसरे सेंटर से दूर। कई जगह पर तो फ्लाइट भी 3-3.5 घंटे की थी इधर से उधर जाने में फ्लाइट, लेकिन इतनी फास्ट टूर करते हुए बाबा ने ऐसे चलाया, ऐसे उड़ाया। साथ ही साथ बाबा था, लेकिन स्थूल में भी बाबा ने उसको निमित्त बनाया, उसने सब कुछ किया, मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, कहीं पूछना भी नहीं पड़ा, यहाँ तक भी मुझे पासपोर्ट भी नहीं उठाना पड़ा, अपने आप सब कर रहा। आप समझ सकते हो कि बाबा कैसे संगम पर साथ निभाता है। लेकिन अगर सच्चे दिल से हमने कहा है मेरा तो एक बाबा दूसरा न कोई। अकेले जाते हैं तो कई परीक्षाएं आती हैं, मुझे पता है, मुझे पहले ग्रुप में अनुभव हुआ था। जब मैं पहली बार गया था उस समय 2007 में, न्यूयॉर्क से मुझे लॉस एंजलिस जाना था, फ्लाइट थी। जब सामान छोड़ करके लोग बिठा कर अंदर डाल छोड़ के गए, हमारा सामान चला गया, बोर्डिंग पास हाथ में आ गया, उसके बाद अनाउंस होता है फ्लाइट 12 घंटा लेट है, कोई कारण से बहुत बरसात है, पीछे फ्लाइट आ नहीं रही है, जा नहीं रही है, 12 घंटे लेट है। और मैं अकेला ऐसे बैठा बाबा की हाथ में, कोई साथी नहीं था। बाबा को बहुत याद किया, हमने कहा अभी 12 घंटे बैठना है यहाँ, और मेरे पास न इधर का फोन है न उधर का फोन है, इंटरनेशनल फोन भी मैं लेके नहीं गया था, ऐसे बैठा था। ऐसे अनुभव होता है जैसे बाबा कैसे सब कुछ करता है और कराता है, सिर्फ सच्ची दिल चाहिए, एक बाबा दूसरा न कोई। ऐसे कई अनुभव हुए जो बाबा ऐसे उड़ाता है, ऐसे चलाता है। इंग्लिश नहीं आती है, ज्यादा कोई से इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, बैठे बाबा की याद में कि बाबा अभी मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, बाबा से बातें कर रहे हैं, इंसान से नहीं। उस समय तो मोबाइल भी नहीं था हाथ में, था ही नहीं समझो 2007 में। थोड़ी देर के बाद एक जगह अनाउंस हो रहा था, राजेंद्र प्रसाद ऑनलाइन बात करें, फोन पर आए, मैं फोन पर पहुंचा जा करके बात किया। सामने से कुमारों ने मेरे से बात किया और कहा कि आपकी फ्लाइट लेट हुई है, मैंने इंक्वायरी यहाँ कर ली है, रिसीव करने जो आए थे उधर, मैं आपकी टिकट चेंज करा रहा हूँ और दूसरे 3 स्थान चेंज करते हुए फिर वो फ्लाइट आएगी यहाँ, आप ख्याल नहीं करना, बोर्डिंग दे रहे हैं आपको, मैंने बात कर लिया है, ये कहाँ कहाँ जाएंगे वो आप सोचना नहीं, आप बोर्डिंग ले लो अपने हाथ में और आप बैठ जाना। हमने कहा भाई सामान मेरा नहीं है मेरे साथ कुछ भी, कहते उसकी फिक्र आपको करने की जरूरत नहीं है, सामान आ जाएगा। अब आप समझ सकते हो बाबा कैसे साथ का अनुभव कराता है। मैं ऐसे ही जब फ्लाइट में बैठने लगा, मुझे कुछ पता ही नहीं था, इतना बड़ा एरोड्रम था। जब नंबर आया, बोर्डिंग गेट का नंबर मैंने देखा, तो उस गेट पर जाने के लिए पहुंचा तो वहाँ ट्रेन खड़ी थी। हमने कहा ये क्या ट्रेन में ले जाएंगे क्या मेरे को? मुझे नहीं पता था कि इतने बड़े एरोड्रम है जो ट्रेन से जाना पड़ता है अपने गेट पर पहुंचने के लिए। तो मैं तो उस गेट के नंबर पर बैठ गया जाकर के ट्रेन में, मैं जहाँ जाना होगा ले जाएगी, हमको क्या पता। और उस ट्रेन में जब उतरे, वहाँ वहीं प्लेन के सामने वो ट्रेन खड़ी हुई और मैं ट्रेन में प्लेन में बैठ गया। अब प्लेन जहाँ उतरा जा करके, क्योंकि तीन फ्लाइट हमको चेंज करके उस स्थान तक पहुँचना था, और मैं अकेला ही, मुझे कुछ जानकारी नहीं दुनिया की। जिस स्थान पर पहुंचा, बहुत छोटा सा एरोड्रम था, उस स्थान का नाम अभी तो मुझे भूल गया, लेकिन मैं ऐसे अकेले बैठा था। सफ़ेद यही ड्रेस थी, जैकेट थी, लेकिन सफ़ेद ड्रेस में बाबा की याद में एक बेंच पर बैठा था। हमने कहा जब टाइम आएगा तो चला जाऊंगा। एक भाई सामने से आता है और कहता है, भाई साहब आप माउंट आबू से आए हैं क्या? तो इसको कहाँ से पता चला मैं माउंट आबू से आया हूँ? मैं, हाँ भाई मैं माउंट आबू से हूँ, आप कहाँ से हैं? बोला मैं सिरोही से हूँ, मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और मैं बच्चों से मिलने आया था, आपको देखा आप अकेले बैठे हैं तो मैं आपसे मिलने के लिए भाग के आया। कहाँ जा रहे हैं आप? क्या आपका सेंटर है यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी का? ना मुझे पता नहीं है, मुझे तो इस स्थान पर जाना, ये मेरे पास बोर्डिंग्स हैं। दिखाया उसको, कहता है कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपको मैं बिठा दूंगा। कहाँ से बाबा ने भेजा मुझे क्या पता, कहाँ से आया सामने से। मेरे पास टोली थी, टोली खिलाई उसको, बिल्कुल घरेलू हो गया। एक दो घंटा कंपनी दिया उसने और प्लेन पर बिठा करके चला गया। मैं घूमते घूमते जब वहाँ पहुँचा तो मेरा सामान सामने था, दो कुमार सामने आए, मेरा स्वागत किया। बाबा कैसे साथ ले जाता, लेकिन हलचल बुद्धि की नहीं होनी चाहिए। जब बुद्धि की हलचल हो जाती है तो सब हलचल में आ जाता है। बुद्धि जरा भी, बाबा कहता स्थिर ही हम रखो, स्थिर रखो, मैं तेरे साथ हूँ। बहुत छोटी दिल कर ले, निराश हो जाए, उदास हो जाए, तो क्या क्या होता है वो तो आप सब जानते हो। कई परीक्षाएं ऐसे जब आती हैं तो उन परीक्षाओं में स्थिति क्या होती है, उस समय बाबा याद आता है, कोई देहधारी याद आता है, कोई तो साथ होता, कोई तो होता। अगर सचमुच बाबा को हमने अपना बनाया है, संसार बनाया है और सच्चे दिल का संबंध उसके साथ रखा है, किसी भी परिस्थिति में कहीं न कहीं से बाबा उसको मदद करने के लिए बंधा हुआ है, हाजिर हो जाता है। और कई कुमारों के भी ऐसे अनुभव हमने सुने हैं। कई बार ऐसे कुमार सोचते हैं, जो आज तक माया कुमारों को अधिक खाती है उसका एक कारण बनता है, कहते हम अकेले होंगे, बीमार पड़ेंगे, फिर क्या होगा, कौन पूछेगा, कौन मदद करेगा। बहनें भी नहीं पूछती ऐसे समय पर, दिन रात हम सेवा करते हैं लेकिन ऐसे समय पर कोई साथ नहीं देता, इसलिए बेचारे कहीं न कहीं साथी ढूंढ लेते हैं, फंस जाते हैं जा करके। लेकिन अगर पक्के हैं, सच्चे हैं, कुछ भी होगा बाबा बैठा है, करेगा मदद, हिले नहीं सिर्फ पेपर में, पेपर आएगा लेकिन उस पेपर में हिले नहीं, फिर देखो कैसे बाबा मदद करता है। एक कुमार समर्पित था, सेंटर पर रहता था, बहुत दिल से सेवा देता था। समर्पित माना उसका फाइल वगैरह नहीं था, सेंटर पर सारा दिन सेवा देता था, अपने माँ बाप की, परिवार की कभी उसने कोई ख्याल नहीं किया, कोई सेवा नहीं की। चलते चलते एक दिन कहीं जा रहा था, स्कूटर लेके एक्सीडेंट हो गया, पैर टूटा। अब पैर टूटा तो उसका मोबाइल तो था उसके पास, तो उसने किसी कुमार को फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ है मेरे पास साथ। भाई आए, कुमार आए, दो चार और जो संगठन था उसका, उसको ले गए हॉस्पिटल में और बहुत प्यार से डॉक्टर की सेवा किया कि देखो ये कुमार जो है ये समर्पित नहीं है लेकिन फिर भी ये दिन रात ईश्वरीय सेवा करते हैं, आप इनकी जो भी खर्चा हो कम से कम में करके दो और हम सब कुमार इसको सहयोग देंगे। ना उसने लौकिक को फोन किया ना टीचर को फोन किया, लेकिन उसके साथी सहयोगी जिनके साथ उसने सेवाएं दी थी करता था, उन कुमारों ने उसको खड़े होकर के उसका सारा कार्य देखा और उनको संभाल लिया। उसको परिवार में फोन नहीं करना पड़ा कि मैं अभी अधीन हो गया हूँ, परवश हो गया हूँ। कई बार इतने दिनों तक माँ बाप के हाथ से खाते नहीं हैं, किसी भी तरह से उनको अवॉइड करते हैं, और जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं उनके पास जाते हैं तो बहुत टोंट कसते हैं, अभी कहाँ गई तुम्हारी बहनें, अभी तुम्हारा बाबा कहाँ गया, दिन रात तो तुम वहाँ लगे रहते थे, अभी क्या हो गया, फिर आए मेरे पास घूम करके। ऐसे समय पर बहुत बड़ी परीक्षा होती है, लेकिन अगर सच्ची दिल है और सच्चे दिल से उसने बाबा से सब संबंध जोड़े हैं, कुछ भी होगा अच्छा मरेंगे कोई हर्जा नहीं है, लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेंगे, बहुत दृढ़ता चाहिए। भगवान परीक्षाएं तो लेता है, लेकिन परीक्षाएं लेता है देखता है इसकी दिल में सच्चाई है। तो मैंने देखा है कहीं न कहीं से साथी सहयोगी सब आ जाते हैं, सब मदद कर देते हैं, कभी कोई की देहधारी की जरूरत नहीं पड़ती। देहधारी माना संबंधों में खिंचावट नहीं होती, देहधारी ही मदद करेंगे आके, शिव बाबा निराकार तो नहीं करेगा, लेकिन कैसे कराना है किससे कराना है वो जानता है। मेरा लगाव न हो, मेरा कोई आकर्षण किसी संबंध में न हो, तो बहुत ध्यान देना, एक बाबा दूसरा न कोई कहना तो सहज है, लेकिन कई प्रकार की जब मानसिक शारीरिक आर्थिक सामाजिक परीक्षाएं आती हैं, उन परीक्षाओं में पास होने के समय बाबा याद आए। ऐसे नहीं थोड़ी बीमारी आई, फलाना डॉक्टर होता तो कितना अच्छा रहता, वो बदली हो गया, अभी तो है ही नहीं, अब कौन मिलेगा। कोई थोड़ी बहुत ऐसी कोई कोर्ट कचहरी वाली बातें आ गई, फलाना वकील होता, ये पुलिस अधिकारी था पहले, बहुत अच्छा था, सहयोग देता था, अब मैं किसके पास जाऊं। कई लोग संबंधों के आधार से कहीं न कहीं किसी न किसी देहधारी पर पहले ध्यान देते, वो होता तो बड़ा अच्छा होता। और जब किसी देहधारी की तरफ बुद्धि जाती है तो बाबा क्या करेगा, अच्छा इसी से ले ले तो मदद पहले, फिर मैं देख लूंगा। बाबा भी बहुत चतुर है ना, अगर पहले से संकल्प आए नहीं बाबा मेरा है साथ में, सबको मदद देख भेज देगा, करेगा अपने आप, सब कुछ करने वाला वो है, वो सर्वशक्तिमान है, हजार भुजाओं वाला है, और वो मेरे साथ है, भले आंखों से दिखाई नहीं देता लेकिन हर पल मदद करने के लिए बंधा हुआ, इतना अंदर का विश्वास अंदर का निश्चय है। तो चाहे डॉक्टर की जरूरत हो, चाहे कोर्ट की पुलिस की जरूरत हो, चाहे वकील की जरूरत हो, चाहे किसी इंजीनियर की जरूरत हो, देहधारी को याद किया तो बाबा खिसक जाएगा। पहले संकल्प में आए बाबा बेटा सब हो जाएगा, करा लेगा। हमारी दादियों ने कभी भी पहले किसी देहधारी को याद नहीं किया, कोई भी काम हुआ बाबा का काम, बाबा बैठा है कराएगा। आप देखो यहाँ पर जितने भवन बने हैं किसी देहधारी के आधार से नहीं बने। मुझे याद आता है जब ओम शांति भवन जमीन लेके एक भाई ने दे दिया, दादी ने उसको ऐसे आंख दिखाई, तुमने जमीन तो ले लिया बनाएगा कौन, जमीन दे के चला गया लेकर के। दादी ये जमीन पहाड़ियां हैं, यहाँ पर शाम को रीछ आते हैं, भालू आते हैं, बहुत भय रहता है, 8 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता है, इसलिए मैंने ये जमीन ले लिया। बाहर का भाई अपना भीखे आकर के, दादी आप इसमें कुछ भी बना लो, ये ले लो। भैया तुमने जमीन तो लिया है लेकिन बनाएंगे कैसे, यज्ञ में इतना पैसा नहीं है। दादी आप कहती हो ना बाबा बैठा है तो बाबा कराएगा, जमीन दे दिया उसने। दादी ने संकल्प किया मुझे कोई बाहर का इंजीनियर, कोई ऐसे आर्किटेक्ट ऐसे कोई नहीं लाने हैं जिनमें हमको हजारों लाखों रुपया देना पड़े, बाबा के बच्चे करेंगे, मधुबन वाले ही करेंगे। आप देखो उसका डिजाइन देखो, उसका नक्शा देखो, सब मधुबन वालों का ही बनाया हुआ है, कोई ने उसका बाहर का रूप दिया है, कोई ने अंदर का दिया है। जब साउंड की बात आई तो एक जाल मिस्त्री था बॉम्बे का, बहुत प्रसिद्ध है, देखने का 1,00,000 रुपया लेता है, वैसे ही बाबा के घर में आया और उसने सारा साउंड सिस्टम सेट करा दिया। कहने का भाव है, अगर एक बाबा दूसरा न कोई, एक बल एक भरोसा है, तो स्थूल कार्य के लिए भी बाबा किसी न किसी को निमित्त बनाता है, मदद कराता है। बाबा ने हमें एक दादी कह रही थी तो मैं एक रुपया आप किसी से नहीं मांगूंगी, कुछ भी हो जाए आप सब लगो कार सेवा करो। और मैं समझता हूँ वो कार सेवा लास्ट सेवा थी जो बाबा ने हम लोगों से कराई है, और सबका खून लगाया, ऐसे नहीं सिर्फ हाथ लगाए, क्योंकि हम लोगों को पत्थर तोड़ना तो आता नहीं था, हथौड़ी तो ले लिया, पत्थर तोड़ने लगे, इधर से उड़ करके उधर गया, उसको चोट लगा दिया, उसको चोट लगा दी, तो सबको ब्लड देना पड़ा, कहीं ना कहीं इधर लगा, कहीं इधर लगा, कहीं कहीं लगा। लेकिन खेल खेल में दादी खुद जा करके खड़ी हो जाती थी, चलो चलो अभी चाय वहीं पीना, पकौड़ा वहीं खाना, और पत्थर उठाओ तोड़ो, सब काम करके जब लास्ट में डेट फिक्स कर दिया, बाबा कहता ना आप लोग डेट पहले फिक्स कर देते हो, फरवरी की डेट फिक्स किया उद्घाटन की, और दिसंबर 82 की दिसंबर में उसकी एक दीवार तक नहीं बनी थी, नहीं मुझे उस फरवरी की डेट में उद्घाटन करना है, और उसके लिए बड़े बड़े वीआईपीज के नाम आ गए उद्घाटन करने वाले। दादी कहती बाबा बैठा है, बाबा बैठा अपने आप हो जाएगा। सामने से एक इंजीनियर अपने ग्रुप को लेकर के सूरत में रहता था भाई, वो उसको पता चला कि हाल इतना अधूरा पड़ा है और दादी ने डेट दिया है, सामने से फोन करके कहता है दादी मैं अपना पूरी गैंग लेकर के आता हूँ और मैं फटाफट बना दूंगा, 15 दिन में मैं सब खड़ा कर दूंगा। कहाँ से आया वो, आ करके अपने आप सब दीवाले बनाई, छत डलवाई, छत डलवाने लगा। एक बूढ़ा काका था जो लोहे का काम करने वाला था, कहता दादी मैं इसकी कैंची बनाऊंगा ऊपर की। सब के सब भाग भाग करके आ गए, जहां जहां जो बच्चे थे सब सेवा के लिए आ गए। 3-4 दिन पहले टाइल्स नहीं लगी थी, दादी ने कहा मोजाइल टाइल्स ले आओ, फटाफट लगा दो रात रात। लगाई, घिसाई किया, और 5-6 तारीख तक फुल काम चल रहा है, और 8 तारीख का उद्घाटन, कायदे से उद्घाटन, और ऐसा धूमधाम से उद्घाटन हुआ, हम लोग सोचते थे शायद स्थापना का काम प्रत्यक्षता का संपन्न हो जाएगा, इतना टीवी अखबारों में चारों तरफ शोर, और बाबा कहते थे सारा आबू तुम्हारा हो जाएगा, तो हमने पूरा आबू बुक कर लिया, पूरा आबू, एक भी होटल बाहर वालों के लिए नहीं है, जितने बाबा के बच्चे आएंगे। दादी ने कहा 3000 का हाल बनाया है तो छोटा पड़ना चाहिए, हाल छोटा पड़ना चाहिए, सबको छुट्टी दे दो, कहाँ रहेंगे पांडव भवन में, इधर 200-250 आते हैं तो भी देखो जगह नहीं मिलती, और 3-4 हजार को छुट्टी दे दिया, सब होटल बुक करो, सब धर्मशालाएं बुक करो, जितना आबू में स्थान सब ले लो। दादी कहती हमने कहा दादी इतना खर्चा आएगा, इतना महंगा, अरे ले लो सब देखा जाएगा, बाबा बैठा है। लगाया हम सबको, हम सब गए होटल लिए, सब धर्मशालाएं लिया, वहां ठंडी के दिनों में गर्म पानी की व्यवस्था नहीं, बिस्तर इतने गंदे, हमारे बीके कैसे सोएंगे। दादी कहती तुम सब जाओ, सब छह उतारो, सब धो दो, धुलाई करके लगा दो। मधुबन वालों को ये सेवा मिली, और सब सचमुच गए, दो दो होटल सबके हाथ में थे, और सब ने पूरे आबू के होटल सबके बिस्तरों को धुलाई किया, पानी गर्म पानी का प्रबंध किया, और जो आया सबको आराम से रखा, उद्घाटन हो गया कायदे से हुआ। सारा आबू में टोटल जितना था, लास्ट में दादी कहती है ये जो बूढ़ा बाबा है ना बड़ा चतुर है। ने क्या चतुराई किया बाबा, दादी ने, दादी को बोला दादी बाबा ने क्या चतुराई किया, कहती है जितना तुम लोगों ने बिल बनाया खर्चा किया ना उतना ही आया, न एक रुपया कम आया न एक रुपया ज्यादा। है ना चतुर, कहती उतना ही भंडारी उन लोगों ने डाला, क्या गिनती करके बाबा ने दिया क्या, जितना तुम लोगों ने खर्चा किया, एक पैसे का एक रुपए का कर्ज नहीं रहा, उधार नहीं रहा, और कोई बचत नहीं हमारे पास, हाल बन गया, उद्घाटन हो गया, होटल का खर्चा पूरा हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन करावन हार बाबा करा, इतना निश्चय था, इतना अंदर का विश्वास था बाबा हमारे साथ है सब हो जाएगा, कई कार्यों में ऐसे हमने देखा दादियों को निश्चिंत रहते हुए, बहुत निश्चिंत स्थिति थी। एक दिन जब मनमोहिनी वन बन रहा था, शायद सुना हो, मैंने सुनाया एक दो बार, दादी के पास मैं अचानक पहुंचा। दादी बड़े मूड में बैठी थी, तबीयत थोड़ी ऐसी थी लेकिन ऐसे बैठी थी। तो मैं बाजू में बैठा, मैंने दादी क्या चल रहा है, क्यों क्या संकल्प, बड़े आप रमणीकता से आज बैठी। कहती इधर आना, ये आज मेरे हाथ में खुजली हो रही है। तो मैंने कहा कहाँ खुजली हो रही है, मैंने भी हाथ पकड़ लिया। हमने कहा दादी दिखाओ कहाँ खुजली होती है, ऐसे ऐसे किया नहीं तो। कहती मैंने कहा दादी खुजली होती तो क्या होता है, कहती पैसा आता है। दादी पैसा आता है तो अच्छा है ना, दूसरे हाथ में नहीं, दूसरे हाथ में खुजली से नहीं आता, इसी में आता है ऐसे। तो मैं तो ऐसे हंसते हुए रमणीकता से उनसे रूह ध्यान करके जा रहा था, निकल के 5 मिनट अपना काम किया और बाहर निकला। 5-7 मिनट के बाद ही मेरे को फिर से पहरे वाले को बोलती, राजू को बुला के लाओ। जब मैं वापस आया, हमने कहा दादी क्या है, कुछ रह गया? कहती है तेरे को बोला था मेरे हाथ में खुजली होती पैसा आता, ये देख आ गया। सामने रखा था 5 लाख रुपया रखा था। तो मैंने कहा दादी कहाँ से आ गया, ऊपर मैंने देखा। हमने कहा बाबा कहते ना कभी कभी छप्पर फाड़ के देता हूँ, तो आपको कोई छप्पर फाड़ के दिया है क्या ऊपर से? तो हंसने लगी, कहती छप्पर फाड़ के थोड़ी दिया, एक बाबा का बच्चा देखो, मैंने बाबा कमरे में बिठा दिया, अभी अभी तेर तुम इधर गया वो इधर आया और मेरे हाथ में दे के गया। सवेरे सवेरे मैं बाबा से रूह ध्यान किया था आज, कि बाबा आज इतना बिल है, इतना खर्चा है, लोग मांग के गए हैं, बिल दे के गए हैं, कोई बाबा आप अपने बच्चे को भेज देना, मैं तो किसी को नहीं बोलूं। बाबा ने भेजा उस बच्चे को, देखो वहां बिठाया मैंने, तुम बाद में से पूछना तुम कैसे ले आया, कहां से लाया। सचमुच जितनी जरूरत थी उतना बाबा ने उसको, दादी को सिर्फ संकल्प से दिया और काम हो गया। फिर बाद में उस भाई को मैं मिला, हमने कहा भाई तुमने ऐसे अचानक कैसे दादी के आगे पैसा रखा, क्या था? कहता बहुत दिन से एक जमीन थी, बिक नहीं रही थी, बिक गई लेकिन पैसा नहीं मिल रहा था, और अभी थोड़ी देर पहले मेरे कोई ने पैसा दिया। मैंने सोचा मैं क्या करूंगा, जमीन बिकी है, मैंने बाबा की सेवा के लिए दादी को दे दिया। कुछ ही समय में उसके संकल्प आए हैं और उसने जमीन का पैसा उसको मिला और सारा ही बाबा के घर में देखे। अगर बाबा के साथ कोई की बुद्धि की लाइन क्लीन है, क्लियर है, बाबा को सब कुछ बनाया है। कई बहनों ने बाबा को पता क्या बनाया, बाबा मेरा मैनेजर है। एक बहन कहती मैंने बाबा को मैनेजर बनाया। मैंने क्यों मैनेजर बनाया है? कहती मुझे मैनेज करना नहीं आता, कोई भी प्रोग्राम करो मुझे थोड़ी पता है कैसे करना, मैनेजर बैठा है ना। अगर कहीं कुछ देना होता है मधुबन में, ज्ञान सरोवर में, कभी कुछ सहयोग भेजना होता है, मैं मैनेजर को कहती हूँ मुझे इतना चाहिए और उतना आ जाता है, मैं दे आती हूँ बड़े निश्चय से। अभी भी अनुभव में यही सुनाती कि मैंने अभी तक बाबा को मैनेजर बनाया है। 2 सेंटर बना दिए हैं मधुबन में, जब जरूरत पड़ी, जब देखा उसने यहाँ इतनी जरूरत है, मैनेजर को मैं बोलती हूँ बाबा मुझे मैनेजर दे जाता है और मैं बाबा की भंडारी में दे देती हूँ। मैं क्यों किसी की चिंता को, मैं किसी से नहीं मांगती, मैनेजर से मांगती हूँ। बाबा को बनाया मैनेजर कि बाप टीचर सतगुरु ही है। सब संबंध उसके साथ अगर सच्चे दिल से किसी ने जोड़े हैं तो बाबा उसको सब कुछ करके देता है। ऐसा ही समय हमारा सच्चा साथी है, लेकिन है गुप्त, दिखाई नहीं देता। कहता है अगर बच्चे मेरे बहुत सच्चे दिल वाले हैं, सिर्फ सच्चाई बाबा को बहुत पसंद है, सच्ची दिल है, तो साहेब राजी है और हर पल मदद करने के लिए बंधा हुआ है। तो हम सब किसी भी इस देहधारी संबंध को इस तरह से याद न करें, वो होता तो बड़ा अच्छा होता, वो होगा तो अच्छा होगा, है तो ठीक है, यूज कर रहे हैं, संबंध सहयोग के लिए होते हैं, लेकिन संबंध बंधन बन जाए उससे अपने को छुटकारा दिलाना है। बंधन में नहीं बंधना, किसी आत्मा के ऊपर प्रभावित हो गए, आकर्षित हो गए, क्या करें उसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा, तो बाबा किनारा कर लेगा। बाबा ही हमारा सर्व संबंधी है, कुछ भी हो जाए बाबा बैठा है, इतना अंदर का विश्वास है तो बाबा उसको हर पल साथ देने के लिए बंधा हुआ है। कैसी भी परिस्थिति में बाबा कहीं न कहीं किसी न किसी को निमित्त बनाता है, सहयोग मिलता है और उस सहयोग से सब कार्य सहज हो जाते हैं। न चिंतन करने की न चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा हमारे साथ है, हम उसके साथ कंबाइंड हैं। तो आप सभी भी बाबा को ऐसा साथी बनाना है निराकार, लेकिन बड़ा गुप्त रीति से जब हम अपने, पहली विधि यही है, हम अपनी आत्मिक स्थिति में रह करके फिर संकल्प रचें, देह मन में आकर के नहीं, भ्रकुटी आसन पर बैठो, बाबा को उसी रूप में देखो, आवाहन करो और बाबा के साथ कंबाइंड हो जाओ, उसकी शक्तियों का अनुभव करो। तो अभी हम 5 मिनट के लिए अनुभव करते हैं, क्योंकि आज सौगात का दिन है, नहीं तो मैं 7:30 तक योग कराता। अभी 5 मिनट के लिए सब बाबा के साथ कंबाइंड हों, सर्व संबंधों से बाबा को आह्वान करके अपने भ्रकुटी में उनके साथ का अनुभव करो। तो पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है, प्यार का सागर है और मेरे साथ है, क्या अनुभव होगा? वही पावन पवित्रता की शक्तियाँ, किरणें, शांति की, सुख की, आनंद की लहरें, उसमें आत्मा अपने आप आनंदित होती रहेगी। चलो हम सभी एकाग्र चित्त होकर के एक निराकार शिव बाबा के साथ कंबाइंड हो जाएं।
भगवान हमारा साथी है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो बहुत अच्छी रीति से सब समझ में आ गया होगा। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का शुक्रिया, थैंक यू, आभार।